नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। माइक रोहड़े की द स्केच नोट हैंडबुक दृश्य नोट लेने की कला पर केंद्रित एक व्यावहारिक चित्रित मार्गदर्शिका है। इसका विषय पारंपरिक नोट्स को सुंदर बनाना पर नहीं बल्कि सुनते समय विचारों को सक्रिय रूप से छाटना, समझना और दृश्य रूप में व्यवस्थित करना है। रोहड़े स्केच नोटिंग को हस्तलिपि, सरल रेखाचित्र, हाथ से लिखी, टाइपोग्राफी, आकार, तीर, बॉक्स और स्थान के संयुक्त उपयोग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य उस आम धारणा को हटाना है कि प्रभावी दृश्य नोट्स बनाने के लिए कलाकार होना आवश्यक है। यह दिखाती है कि कुछ बुनियादी आकारों और नियमित अभ्यास से कोई भी व्यक्ति बैठकों, व्याख्यानों, सम्मेलनों या निजी विचारों के बेहतर नोट्स बना सकता है। पुस्तक शुरुआती पाठक के लिए क्रमबद्ध अभ्यास, दृश्य उदाहरण और पृष्ठ संरचना की विधियां देती है। साथ ही यह बताती है कि स्केच नोट का मूल्य उसकी कलात्मक चमक में नहीं बल्कि विचारों को पकड़ने, प्राथमिकता देने और बाद में याद करने की क्षमता में है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, स्केच नोटिंग का लक्ष्य शब्दशः प्रतिलेखन नहीं, विचारों का चयन और संश्लेषण है। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि नोट लेने वाला व्यक्ति वक्ता के हर शब्द को दर्ज करने वाला यंत्र नहीं है। स्केच नोटिंग में सुनना, अर्थ निकालना, मुख्य बिंदु चुनना और उन्हें शब्दों तथा दृश्य संकेतों में बदलना एक साथ होता है। इसलिए तैयार पृष्ठ किसी भाषण की पूरी प्रतिलिपि नहीं होता बल्कि उसका विचारात्मक नक्शा बनता है। रोहड़े के अनुसार इस प्रक्रिया में शीर्षक, प्रमुख वाक्यांश, उदाहरण, संबंध और निष्कर्ष को अलग महत्व दिया जाता है। आकार, अक्षरों का आकार, स्थान और सीमाएं बताते हैं कि कौन सा विचार केंद्रीय है और कौन सा सहायक। तीर कारण, क्रम या प्रभाव का संबंध दिखा सकते हैं। इस चयनात्मकता का व्यावहारिक अर्थ यह है कि नोट्स अधिक उपयोगी बनते हैं क्योंकि बाद में पाठक को लंबे अनुच्छेदों में आवश्यक बात खोजनी नहीं पड़ती। हालांकि यह विधि तभी प्रभावी है जब व्यक्ति विषय को समझने के लिए पर्याप्त ध्यान दे। केवल सजावटी चित्र जोड़ देना स्केच नोटिंग नहीं है। पुस्तक दृश्य तत्वों को सुनने और सोचने की प्रक्रिया के अधीन रखती है, इसीलिए इसका उपयोग व्याख्यान, बैठक और प्रस्तुति जैसी तेज गति वाली स्थितियों में भी संभव है जहां हर सूचना नहीं बल्कि अर्थपूर्ण संरचना पकड़ना अधिक जरूरी होता है। दूसरा, 5 मूल आकारों से चित्रकारी के डर को उपयोगी दृश्य शब्दावली में बदला जा सकता है। द स्केच नोट हैंडबुक की शुरुआती बाधा निवारक शिक्षा यह है कि चित्र बनाना और कलाकार होना एक ही बात नहीं है। रोहड़े वृत्त, वर्ग, त्रिकोण, रेखा और बिंदु जैसे साधारण आकारों को दृश्य शब्दावली का आधार मानते हैं। इन्हीं से चेहरे, लोग, वस्तुएं, संकेत, बैनर, बॉक्स और सरल प्रतीक बनाए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य यथार्थवादी चित्र बनाना नहीं बल्कि इतनी जल्दी पहचान में आने वाली छवियां बनाना है कि वे विचार का सहारा बन सके। उदाहरण के लिए, एक साधारण बल्ब विचार का, तीर दिशा का या छड़ी जैसे व्यक्ति का पात्र अथवा श्रोता का संकेत हो सकता है। पुस्तक चरणबद्ध ढंग से लोगों, चेहरों, अक्षरों और सामान्य वस्तुओं के सरलीकृत रूपों का अभ्यास कराती है। यह अभ्यास गति और आत्मविश्वास दोनों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वास्तविक समय के नोट्स में विस्तृत चित्र के लिए समय नहीं मिलता। सीमित आकारों का एक और लाभ निरंतरता है। जब व्यक्ति बार बार समान सरल चिन्हों का उपयोग करता है तो उसकी निजी दृश्य भाषा विकसित होती है। पुस्तक इस निजी शैली को स्वीकार करती है। वह किसी एक आदर्श चित्रण की नकल नहीं मांगती बल्कि स्पष्टता, उपयोगिता और अभ्यास को प्राथमिकता देती है। तीसरा, दृश्य पदानुक्रम और पृष्ठ विन्यास से सूचना को पढ़ने योग्य स्मृति मानचित्र बनाया जाता है। स्केच नोटिंग में जानकारी क्या लिखी गई है, जितना महत्वपूर्ण है कि वह पृष्ठ पर कहां और किस रूप में रखी गई है। पुस्तक पृष्ठ विन्यास, पदानुक्रम और समूहों की भूमिका पर ध्यान देती है। बड़ा शीर्षक विषय का प्रवेश बिंदु बनता है, छोटे अक्षर सहायक विवरण को अलग रखते हैं, बॉक्स किसी विचार को सीमा देते हैं जबकि रेखाएं और तीर अलग हिस्सों के बीच संबंध स्पष्ट करते हैं। इस तरह पृष्ठ एक रैखिक सूची के बजाय ऐसा दृश्य क्षेत्र बन जाता है जिसमें आंख जल्दी से मुख्य बिंदुओं, क्रम और जुड़ी अवधारणाओं तक पहुंच सके। रोहड़े अलग लेआउट अपनाने की संभावना भी दिखाते हैं, जैसे ऊपर से नीचे बढ़ता क्रम, बाएं से दाएं प्रवाह, केंद्र से फैलती संरचना या अधिक मुक्त व्यवस्था। सही विकल्प सामग्री की प्रकृति और वक्ता की प्रस्तुति पर निर्भर करता है। यदि विषय चरणों में आगे बढ़ता है तो क्रमिक प्रवाह उपयोगी होगा। यदि विचार कई शाखाओं में फैले हों तो केंद्रित विन्यास अधिक उपयुक्त हो सकता है। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश है कि शुरुआत में खाली जगह छोड़ना और पूर्णता के दबाव से बचना चाहिए। पृष्ठ को भरने की बजाय सूचना को सांस लेने की जगह देने से संशोधन, जोड़ और दृश्य संतुलन संभव होता है। यह व्यवस्था बाद के पुनरावलोकन को भी तेज बनाती है। चौथा, सुनने की तैयारी, सीमित उपकरण और वास्तविक समय की गति स्केच नोट प्रक्रिया का आधार है। रोहड़े स्केच नोटिंग को केवल ड्राइंग तकनीक नहीं मानते, बल्कि ध्यानपूर्वक सुनने की विधि भी मानते हैं। वास्तविक समय में नोट बनाते हुए व्यक्ति को वक्ता की गति, विषय के बदलाव और मुख्य संदेशों पर नजर रखनी होती है। इसलिए पुस्तक पहले से तैयारी, उपयोगी उपकरणों के चयन और लगातार अभ्यास को महत्व देती है। एक छोटा नोटबुक, भरोसेमंद पेन और कुछ चुने हुए रंग अक्सर पर्याप्त होते हैं। सीमित उपकरणों का लाभ यह है कि व्यक्ति विकल्पों में उलझने के बजाय सुनने पर केंद्रित रह सकता है। पेन का उपयोग भी एक उपयोगी अनुशासन है, क्योंकि यह गलती मिटाने की आदत और पूर्णता की चिंता को कम करने में मदद करता है। गलतियां प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है और पृष्ठ को सुधारने के बजाय आगे बढ़ना वास्तविक समय की क्षमता के लिए आवश्यक है। पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि हर बैठक या व्याख्यान में एक ही तरीका नहीं चलेगा। कभी मुख्य उद्धरण पकड़ना उपयोगी है, कभी प्रक्रिया का चित्र और कभी वक्ता के तर्कों का क्रम। इस लचीलेपन के लिए सक्रिय सुनना जरूरी है। स्केच नोट बनाते समय हाथ व्यस्त रहता है, पर लक्ष्य हाथ की व्यस्तता नहीं, मन की संलग्नता है। इसी कारण यह अभ्यास भटकाव घटाने और विषय के साथ बने रहने में सहायक हो सकता है। अंत में निजी शैली और समुदाय के उदाहरण बताते हैं कि स्केच नोटिंग की कोई एक सही पद्धति नहीं है। पुस्तक की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि यह स्केच नोटिंग को लेखक की निजी शैली तक सीमित नहीं करती। रोहड़े अन्य अभ्यासकर्ताओं के काम और दृष्टिकोणों को शामिल करके दिखाते हैं कि एक ही विषय को कई दृश्य भाषाओं में दर्ज किया जा सकता है। किसी के नोट्स में अक्षरों का जोर अधिक हो सकता है, किसी में प्रतीक और पात्र अधिक दिख सकते हैं, और कोई व्यक्ति रंग अथवा कठोर ग्रिड का उपयोग कर सकता है। यह विविधता शुरुआती व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुलना अक्सर अभ्यास शुरू होने से पहले ही आत्मविश्वास कम कर देती है। पुस्तक का रुख यह है कि प्रभावशीलता का माप चित्रों की जटिलता नहीं, बल्कि यह है कि नोट बनाने वाले को विचार समझ आए और बाद में उपयोगी लगे। निजी शैली धीरे धीरे दोहराव से बनती है। व्यक्ति जिन विषयों को अक्सर दर्ज करता है, जिन प्रतीकों को तुरंत बना सकता है और जिस पृष्ठ रचना को सहज पाता है, वही उसकी शैली का आधार बनते हैं। समुदाय का महत्व केवल प्रेरणा तक सीमित नहीं है। अलग उदाहरण देखने से पाठक समझता है कि तकनीक को शिक्षा, डिजाइन, व्यवसाय, योजना या निजी चिंतन जैसी जरूरतों के अनुसार ढाला जा सकता है। इस खुलेपन के कारण पुस्तक नियमों की कठोर सूची के बजाय प्रयोग और अनुकूलन का ढांचा प्रदान करती है। निष्कर्ष में द स्केच नोट हैंडबुक उन विद्यार्थियों, पेशेवरों, शिक्षकों, डिजाइनरों और स्वतंत्र रूप से सीखने वालों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिन्हें बैठकों, कक्षाओं, प्रस्तुतियों या अध्ययन सामग्री से मुख्य बातें पकड़ने में कठिनाई होती है। यह उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है जो सामान्य लिखित नोट्स को दोहरावपूर्ण पाते हैं, लेकिन चित्रकारी में खुद को कमजोर मानते हैं। पुस्तक का लाभ किसी जटिल कला कौशल में नहीं, बल्कि ध्यान, चयन, संरचना और पुनरावलोकन की बेहतर आदतों में है। पाठक सीखता है कि महत्वपूर्ण विचारों को छोटा कैसे किया जाए, उनके बीच संबंध कैसे दिखाए जाए और अपने नोट्स को बाद में उपयोगी संदर्भ कैसे बनाया जाए। दृश्य सोच पर लिखी अनेक पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान इसका अत्यंत व्यावहारिक और हाथों से करके सीखने वाला स्वरूप है। यह बड़े सिद्धांतों पर रुकने के बजाय सरल आकारों, अक्षर शैली, पात्रों, आइकनों और पृष्ठ विन्यास के ठोस अभ्यास देती है। पुस्तक स्वयं भी चित्रित नोट्स की शैली में रची गई है, इसलिए माध्यम और संदेश एक दूसरे को मजबूत करते हैं। इसका एक अन्य अंतर यह है कि रोहड़े किसी निश्चित सौंदर्य मानक को अनिवार्य नहीं बनाते। वे विविध शैलियों को स्थान देते हैं और उपयोगिता को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए यह पुस्तक केवल सुंदर नोट्स बनाने की मार्गदर्शिका नहीं, बल्कि सक्रिय सुनने और विचारों को अपने ढंग से व्यवस्थित करने की आरंभिक पुस्तिका है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं माइक्रोद, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।